आगास वाली प्रतिमा पृष्ठ नंबर 185 है, गाथा 261। जम वत्थु अणीयंतम एयंतम तंपि हो दि सविपेखम सुयनाणी निर्णये हिय निरवेखम दि सदेणेव। जम वत्थु अणियंतम, जो वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तम एयंतम पि होदि, वो सव्यपेक्षम माने अपने प्रतिपक्ष की भी अपेक्षा रखते हुए, जैसे नित्य है वो अनित्य को भी अपने साथ में समेटे हुए हैं और अनित्य जो है वो नित्य को भी अपने अंदर गर्भित किए हुए हैं। इस प्रकार वस्तु नित्य अनित्यादि रूप भी होती है, अपने प्रतिपक्ष को अपने अंदर गर्भित करते हुए। निरपेक्षम दिश देने, क्योंकि कोई भी पदार्थ निरपेक्ष रूप से यानी उसके दूसरे पक्ष से रहित नहीं हो सकता। एक कॉइन है कोई भी, तो उसका इस तरफ वाला हिस्सा भी होगा, उस तरफ वाला भी हिस्सा होगा। वैसे वस्तु है तो वो नित्य रूप भी होगी, अनित्य रूप भी होगी, एक रूप भी होगी, अनेक रूप भी होगी, और अस्थि रूप, नास्ति रूप, तत्रूप, अतत्रूप, इस प्रकार अनेकांत स्वरूप होती वस्तु। लेकिन एक पक्ष को जब ग्रहण करते हैं तो उसको एकांत कहते हैं, लेकिन वो एकांत जैन मत में सम्यक एकांत के रूप में पाया जाता है। सम्यक एकांत उसको कहते हैं कि जो अनेकांत को निषिद्ध नहीं करता किंतु किसी नए की अपेक्षा से, देखो क्या लिखा है, स्वे नाणे ने श्रुत ज्ञान की अपेक्षा और नए ही नयों की अपेक्षा भी वो सव्यपेक्षम एकांतम तत् भवति। वो जो अनेकांत रूप वस्तु है वो अपने किसी अपेक्षा से एकांत रूप भी होती है, वरना अनित्यानुप्रेक्षा कैसे पढ़ोगे आप? अगर अनित्यानुप्रेक्षा का एकांत बना लो तो फिर बौद्ध मत आ जाएगा, जैन मत रहेगा नहीं। सब कुछ नश्वर है, जो भी जन्मा है वो मरेगा, ये सारी बातें जो है वैराग्य उत्पादक तो है ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिद्धांत की दृष्टि से विचार करो तो सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने पर वो एक नए दृष्टि है, और उसकी दूसरी दृष्टि क्या कहती है कि आत्मा शाश्वत है, सब पर्याय क्षणिक है, नश्वर है, लेकिन द्रव्य स्थाई है। तो इस अपेक्षा को साथ में लेकर के जो एकांत चलता है वो सम्यक एकांत होता है, माने जिसमें अपेक्षा दर्शाई जाती है उस एकांत को सम्यक एकांत कहते हैं, और जो सर्वथा एकांत होता है वो मिथ्या एकांत है। सर्वथा एकांत का मतलब कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं जानते बोले हम, और नहीं मानते, वो तो ऐसा है तो ऐसा ही है बस, आत्मा त्रिकाल शुद्ध ही है। अगर ऐसा इसका एकांत करो तो फिर वो वही जो प्रश्न थे पिछले, उसमें आपको ख्याल में हो कि यदि आत्मा अनादि से शुद्ध है तो कितने प्रश्न खड़े हुए थे, कम से कम 4-5 प्रश्न खड़े होते हैं। अगर अनादि से शुद्ध है तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता, तपस्या तो शुद्धिकरण है, जो शुद्ध है उसका क्या शुद्धिकरण है? प्योर दूध को शुद्ध कैसे करोगे आप, वो तो प्योर है ही ऑलरेडी। फिर दूसरा प्रश्न क्या था कि यदि आत्मा अनादि से शुद्ध है तो शरीर क्यों धारण कर रही है? जो शुद्ध है उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता क्या है? फिर एक प्रश्न था कि अगर शुद्ध है तो कर्म बंद क्यों जारी है? शुद्ध में कर्मों का बंधन कैसे संभव है? फिर अगर शुद्ध है तो सुखी क्यों हो रही है, दुखी क्यों हो रही है संसार में? तो फिर बाद में उन्होंने बताया था कि सर्वथा शुद्ध तो सिद्ध भगवान है, और फिर एक दृष्टि से निश्चय नए की दृष्टि से आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तो वो दृष्टि ज्ञान में आए तो फिर बात खुलती है। कल जो शंका थी वो रह गई थी कि ज्ञान पर को नहीं जानता, निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता। और फिर वैसे सिद्धांत में दो पक्ष है इसके, एक अपेक्षा से ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है, ये एक मत। फिर दूसरी अपेक्षा से ज्ञान पर को जानता है, दर्शन स्व को जानता है। स्व को ग्रहण करने वाला दर्शन होता है और पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है। और फिर एक तीसरा वो है निश्चय ने, कि निश्चय ने से ज्ञान पर को नहीं जानता। इसका क्या खुलासा हो सकता है? आप लोगों ने पता किया क्या? चर्चा करना चाहिए, थोड़ा बहुत खोजबीन करना चाहिए। अपने दुकान में लग गए और खेल खत्म, 24 घंटे समाप्त। कोई ऐसी चर्चा आती है तो फिर उसमें खोजबीन करना चाहिए। बताओ इसका क्या जवाब है? ज्ञान पर को नहीं जानता, केवल ज्ञानी भगवान सर्वज्ञ है। नियम सार में ये बात आती है, शुद्धोपयोग अधिकार है नियम सार में, उसमें पहली गाथा जान दि पश्यति सर्वं व्यवहारेण केवली भगवान। केवली भगवान व्यवहार ने से सबको जानते हैं। और केवल नाणी जान दि पश्यति नियमेण अपानम, निश्चय से वो केवल अपनी आत्मा को ही देखते जानते हैं, पर को नहीं जानते। ये तो केवली भगवान की बात हो गई। और फिर केवली भगवान का ज्ञान, जब केवल ज्ञान भी पर को नहीं जानता, तो फिर मतिश्रुत आदि ज्ञान कैसे क्या जानेंगे, किसको जानेंगे? निश्चय से। तो उसका समाधान बहुत सीधा सरल समाधान है कि जो भी ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञान को दर्पण का रूपक दिया जाता है। यद विद्या दर्पणायते, जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या में दर्पण जैसी घटना घटित होती है, सालोकानाम त्रिलोकानाम अलोक सहित तीनों लोक, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं उसी प्रकार प्रतिभासित होते हैं। तो अब देखना यह है कि दर्पण में वो जो आकार दिखाई दे रहा है, वो आकार किसका आकार है? बहुत सुंदर दृष्टांत है और अच्छा समझने लायक बात है। किसका आकार है वो? जैसे मान लो दर्पण के सामने आपने दीपक रखा है, दर्पण में जो उसका दीपक का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो तो सही है, वो तो प्रतिबिंब, तो उसी प्रतिबिंब की परिभाषा आप बता रहे हैं। हमारा प्रश्न दूसरा है, हम क्या पूछ रहे हैं कि वो क्या वस्तु है जो दर्पण के अंदर अपने को दिख रही है बाहर से, वो क्या चीज है? प्रतिबिंब तो ही है वो, लेकिन वो प्रतिबिंब द्रव्य गुण पर्याय इसमें अगर अपन देखें तो फिर वो है क्या चीज? वो तो ये स्पष्ट समझ लेना कि वो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की ही एक पर्याय है। सामने रखे हुए वस्तु की पर्याय नहीं है वो, सामने रखी हुई वस्तु सामने है, दर्पण के अंदर वो वस्तु नहीं है। लेकिन दर्पण में ऐसी क्षमता होती है कि जो कुछ सामने होता है उसकी आकृति का प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर स्वयं बन जाता है। बस ज्ञान भी दर्पण के समान है। ज्ञान कोई भी वस्तु सामने हो तो अपनी सीमा के अंदर, जो भी वस्तु है ग्रहण करने की सीमा के अंदर, उस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है। तो ज्ञान उस वस्तु को नहीं जान रहा है, उस अंदर पड़े हुए प्रतिबिंब को जान रहा है। इसलिए क्या हुआ, निश्चय से ज्ञान ने पर को नहीं जाना, अपने अंदर के जो ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ा है उसको ज्ञान ने जाना है। अब जैसे फोटो किसका खींचता है, आपका या आपका प्रतिबिंब जो उसके अंदर लेंस के थ्रू होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ता है, उस प्रतिबिंब का फोटो आता है, किसका आता है? ये भी एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत है ये, आज के वैज्ञानिक युग का दृष्टांत। दर्पण का तो पुराना दृष्टांत हो गया, जमाना बीत गया। वैज्ञानिक युग का दृष्टांत क्या है कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है एक सामने, और वो जूम लेंस में तो फिर उसके मतलब वो एडजस्टमेंट सिस्टम रहता है। तो उससे क्या होता है कि सामने जो भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब इसके अंदर उल्टा पड़ता है। किसके अंदर? वो जो रील है, वो रील के ऊपर जो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा वो नहीं पड़ता, उसका प्रतिबिंब पड़ता है और फिर वो आकृति उसमें अंकित हो जाती है उस रील में। जैसे आपने वो दबा दिया तो फिर अंदर जो उसका प्रकाश पहुंच गया वो आकृति का, तो वो आकृति का जो प्रतिबिंब है वो इसमें अंकित हो गया। फिर उसको पॉजिटिव बना लो आप तो फोटो किसका आया? आपका या आपके प्रतिबिंब का? कहने में व्यवहार ने तो थोड़ा सा सबको समेट करके बोलता है, कहने में ये बोलते हैं अपन कि ये मेरा फोटो है। फोटो वास्तव में मेरा नहीं, मेरे प्रतिबिंब का है। उसी प्रकार ज्ञान इसका हो रहा है ऐसा कहते हैं अपन व्यवहार में, बोलचाल में, कि मैंने इसको जाना, वास्तव में इसको नहीं जाना, इसका जो प्रतिबिंब मेरे ज्ञान के अंदर पड़ा उस प्रतिबिंब को मैंने जाना। और वो जो प्रतिबिंब है वो पुद्गल की पर्याय नहीं है क्या? जैसे सामने ये जो चीज है, मैग्नीफाइंग शीट बोलते हैं इसको, ये पुद्गल द्रव्य है, लेकिन ज्ञान में जो जाना जा रहा है वो ये जाना नहीं जा रहा, इसका प्रतिबिंब अपन जान रहे हैं और इसका प्रतिबिंब जो है वो ज्ञान की पर्याय है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो जो दिए का रिफ्लेक्शन है मिरर के अंदर, वो दिए की पर्याय है या मिरर की पर्याय है? मिरर की, अगर दिए की पर्याय हो तो दर्पण चटक जाए, नहीं चटकेगा? बताओ, अग्नि से दर्पण ठीक रहता है क्या? कांच, पतला कांच तो चल भी जाए, लेकिन मोटा कांच जो है अग्नि की गर्मी से चटक जाता है। इसलिए केमिस्ट्री लैब में हमेशा टेस्ट ट्यूब पतले कांच के रहते हैं, मोटे कांच पर गर्म नहीं किया जा सकता किसी को। आप सोचो कि मोटा है तो मजबूत रहेगा, ऐसा नहीं है, मोटा कांच चटक जाता है। तो दर्पण में अगर दिया चला जाए, दर्पण में दीपक नहीं होता, दीपक का प्रतिबिंब होता है, और वो दीपक का प्रतिबिंब दीपक की पर्याय नहीं है, दीपक का प्रतिबिंब दर्पण की पर्याय है। उसी प्रकार अपने ज्ञान में जो पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है वो अपने ज्ञान की पर्याय होती है। इसलिए निश्चय से ज्ञान ज्ञान की ही पर्याय को जानता है, पर को नहीं जानता। इतनी सी बात थी, कल हमने निकल गई मुंह से, इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको 10 मिनट हमने अभी दे दिए। फिर इसके आगे कहते हैं सवंपि अणीयंतम। आवाज मद्दी क्यों हो गई आपकी? कि गाथा ज्यादा पलट गई क्या? पेज नहीं नहीं सही चल रही, 262 है। आपका पेज नहीं पलटा, कोई बात नहीं। सवंपि अणीयंतम परोखरूवेण जंपया सीधी तम सुयर्नाणम भंडदी संशय बहुदी ही परिचत्तम। परोक्ष रूप से जम जो सबवंपि अणियंतम सब अनेकांत स्वरूप वस्तु को पयासेदि प्रकाशित करता है, तम सुयर्नाणम भंडदि उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। परोक्ष रूप से अनेकांतात्मक वस्तु को जो प्रकाशित करने वाला ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है श्रुत ज्ञान। और संशय बहुदी ही परिचित्तम, लेकिन उसमें संशय आदि दोष न हो तब वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, अगर दोष होंगे तो वो कुश्रुत ज्ञान होता है। अभी सवेरे हम लोग जा रहे थे बाहर तो रास्ते में चर्चा चल रही थी, चर्चा ऐसी चली कि ये जो अभी वर्तमान में कार्यक्रम चल रहे हैं नाइट के लंबे चौड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें बहुत प्रतिभाशाली लोग आते हैं, कलाकार लोग, पर उनका जो ज्ञान है वो चूंकि विषय कषायों में ही प्रवृत्त है इसलिए वो सम्यक श्रुत ज्ञान का फल नहीं माना जाएगा। मिथ्या श्रुत ज्ञान जो होता है वो नई नई उल्टी सीधी चीजों का आविष्कार कराता है और फिर बस विषय कषायों में ही मनुष्य के मन को उलझाए रखता है। और जो सम्यक श्रुत ज्ञान होता है वो वातावरण को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, उसी वातावरण में आपको काम दूसरा करना है। अभी सवेरे किसने बोला था कि शिव खेड़ा की एक बुक में लिखा हुआ है कि जो सफल व्यक्तित्व होते हैं वो काम वही करते हैं जो असफल लोग करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है उनका, इतना फर्क है दोनों में। तो यहां पर भी ज्ञान में जानने में तो वही चीजें आने वाली हैं, सम्यक दृष्टि भी अपने ज्ञान से, क्या सांप को सांप ही जानेगा ना, सांप को अजगर तो नहीं समझेगा, सांप है तो उसको सांप ही जानेगा, उसको घरोली या फिर और कोई दूसरा प्राणी तो नहीं जानने वाला, नेवला वगैरह जो जैसा उसको वैसा मिथ्या दृष्टि भी जानता है और वो भी जानता है। लेकिन बस जीव अजीव आदि तत्वों के बारे में उसके अंदर भ्रम रहता है। और फिर यहां संशय पहुदी ही लिखा, संशय, संशय का मतलब जिनेन्द्र प्रणीत तत्वों के प्रति अंदर एक संशय बना रहता है। दो कोटि को छूने वाले ज्ञान का नाम है संशय। दो कोटि को छूने वाला ज्ञान मतलब ऐसा है या ऐसा है, ये है या वो है, इसको संशय कहते हैं, डाउट। फिर संशय विपर्यय, एक विपर्यय ज्ञान होता है, उसके तीन भेद बतलाए थे सर्वार्थ सिद्धि में, आपको ख्याल में हो तो, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, कारण विपर्यास, तीन भेद थे। तो विपरीत निर्णय करता हो, जैसे चांदनी रात में समुद्र के तट पर सफर टहलते समय कोई चमकीली वस्तु को देखकर सोचता है कि चलो ये चांदी का आभूषण मिला, आज भाग्य खिल गया, और सवेरे जब दिन निकलता है तो देखता है कि सीप था। रात को उसने विपर्यय किया, विपर्यय किया मतलब किसी को कुछ उल्टा ही समझ लिया, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना निर्णय रूप से, उसको विपर्यय कहते हैं। और दो कोटि को छूने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और एक तीसरा भी दोष होता है ज्ञान में, अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ होता है उद्यम, प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ। अनध्यवसाय का मतलब ये जीवादि तत्व की जब जानकारी मिलती है किसी को तो कोई तो प्रयास करता है, जानने की कोशिश करता है, रुचि रखता है, और कोई सोचता है कि अरे होगा कुछ, क्या करना, अपने को अपन अपना काम संभालो, ये फुर्सत वालों के काम है जीवादिक तत्वों की चर्चा करना, जिनके पास पुरुषार्थ करने का कोई समय नहीं है, फालतू समय पड़ा हुआ है, वो ये सब पढ़ते हैं शास्त्र वगैरह। अनध्यवसाय, मैंने वो जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा, जीव है या नहीं है कोई उसकी रुचि नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे क्या करना उससे, मुझे मेरा काम करने दो, तुम्हें अगर ज्यादा पसंद है तत्व तो तुम करो अपना, मैं थोड़ी तुमको रोक रहा हूं, तुम मुझे क्यों इंटरफेयर करते हो मेरे काम में, मुझे तो गरबा पसंद है या फिर मुझे अमुक चीज पसंद है, मुझे वो चीज, ऐसे वो अपनी लिस्ट गिना देगा। तो अनध्यवसाय माने बिल्कुल रुचि नहीं उसको जानने की। जैसे गच्छत तृणस्पर्शवत, क्या बताया उसमें दृष्टांत द्रव्य संग्रह में, कोई चला जा रहा है, पैर में कुछ लगता है, पैर में कुछ पहना नहीं उसने, तो पैर में कुछ लगता है, अरे होगा कुछ, चलो आगे चला जाता है। फिर जब चुभता है ज्यादा तो सोचता है कि कांटा है कि कांच है, संशय। फिर विपरीत निर्णय करे कि कांटा ही है, और फिर बाद में जब निकालो तो कांच निकला, ये विपर्यय। एक ही दृष्टांत में सारी चीजें आ रही, तो ये इन दोषों से रहित होता है वो श्रुत ज्ञान। फिर इसके आगे क्या आते हैं, लोयाणम व्यवहारम धम्म विवक्खाई जो पसाहेदी सुर्णानस वियप्पु सुविनो लिंग संभूदु। जो लोक के व्यवहार को पसाहेदी साधता है, और धम्म विवक्खाई, धर्म माने गुणधर्म की विवक्षा को लेकर यानी अपेक्षा को लेकर, जो लोक व्यवहार को सिद्ध, पुत्र है तो पिता की अपेक्षा से पुत्र है, वो अपेक्षा को लगा करके लोक व्यवहार को सिद्ध करता है, अपने पुत्र की अपेक्षा तो पिता ही रहेगा, और स्वीर नानस्य वियप्पो, और वो श्रुत ज्ञान का ही एक भेद होता है, और लिंग संबुदो किसी चिन्ह से प्रकट होने वाला होता है, किसी कारण से वो अपेक्षा से वो बात आती है ज्ञान में या कथन में, उसका नाम है नय। नयति वस्तु स्वरूपम इति नय, जो वस्तु के स्वरूप को किसी दृष्टि से अपने को समझाए या वस्तु का परिचय कराए किसी अपेक्षा से, उसका नाम है नय। नाना धम्म जुदम पिय एयम धम्मम पिबुच्यते अत्थम तस्सेव विवक्खादो नत्थि विवक्खाहुसे साणम। अब नय क्या करता है कि वस्तु अनेक रूप होती है, अनेकांतात्मक होती है, लेकिन फिर भी नय उसमें से किसी एक बात को मुख्य करके उसको उस रूप बता देता है। जैसे नाना धम्म जुदम पिय, अनेक धर्मों से अनेक गुणों से युक्त अत्थम पदार्थ है, लेकिन एयम धम्मम बुच्छेदे, वो एक धर्म को एक गुण को प्रकाशित करता है नय। तस्से वो विवक्खा दो, क्योंकि वो उसी को विवक्षित करता है। उसी को विवक्षित करने का मतलब क्या है, मुख्यता देता है। जैसे क्या कहा, आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूपी है। अब ये प्रमाण कथन है या नय कथन है? अगर कहो कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, सिर्फ ज्ञान स्वरूपी है, तो सुख दर्शन वीर आदि इसके जो अनंत गुण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नय होता है वो बाकी को गौण करके एक को प्रमुख बनाता है। बस यही नय का काम है। नत्थि विवक्षा हो शेषाणम, सिर्फ नय के कथन में क्या होता है कि शेष गुणों की विवक्षा नहीं होती, शेष गुण नहीं होते, ऐसा नहीं है, उनकी मुख्यता नहीं होती, ये बात है। सोचिए एक को धम्मो वाचे सद्दो वित्तस धम्मस जम जान दितम नाणम ते तिन्निवि नय विशेषाय। नाणम लिखा है या नाणम लिखा है, नमोकार का ण है या फिर नल का, नल का है ना, तो चलता है, प्राकृत भाषा में बहुत विकल्प है। श्वेतांबर ब्राह्मण में तो जो नमोकार मंत्र बोला जाता है मंदिर मार्गियों में, न से ही प्रारंभ होता है, और व्याकरण से अशुद्ध नहीं है वो। आप ये समझो कि भाई हमारा दिगंबरों का सही है और फिर उनका गलत है, ऐसा कॉम्पिटिशन मत करना। लेकिन हाँ, उनके मत में भी ये माना जाता है, उनके विद्वानों का ये मत है। एक शाश्वत धर्म नाम की पत्रिका आती है श्वेतांबर मत की, तो 92 का अंक देखिएगा आप, चातुर्मास वाला, अगर कहीं मिले तो, उपलब्ध हो जाए तो पता कर सकते हैं आप लोग। यहाँ परिचय तो आपका बहुत अच्छा विस्तृत है, हिम्मतनगर से मुंबई तक के लंबा चौड़ा विस्तार है, तो पता करने की कोशिश जरूर करना। वो लेख अगर मिल जाए आपको तो जरूर उसका संग्रह करना। उसमें श्वेतांबर विद्वानों ने बताया है कि दिगंबरों में जो ऋण वाला पार्ट है उसमें मंत्र शक्ति की अपेक्षा से ज्यादा शक्ति है, और श्वेतांबरों में आ यरियाणम पाठ है, दिगंबरों में आ इरियाणम पाठ है ई, तो आ इरियाणम स्वर होने के कारण स्वर की शक्ति ज्यादा होती है व्यंजन से। ऐसा एक सुंदर लेख है, वो आप खोजना कभी, नाम याद रख लो पत्रिका का, नहीं तो अभी आप तो बाहर निकलते ही साथ सब भूल भाल जाते हैं। शाश्वत धर्म 1992 चातुर्मास अंक। अब जिनका ज्यादा विस्तार परिचय है उनको तो आसानी से प्राप्त भी हो सकता है। श्वेतांबर बंधु यहाँ भी हिम्मतनगर में है, बहुत सारे उनसे आप पता कर सकते हैं, अच्छे परिचय तो होंगे ही आपके निश्चित। तो क्या कह रहे हैं, सोची एक को धम्म, वो एक धर्म यानी ज्ञान स्वरूप ही कह दिया आत्मा को, तो वो ज्ञान है, वो एक धर्म हो गया आत्मा का, गुण हो गया वो। और वाचे सद्दो, और उसका वाचक जो शब्द है, जैसे कपड़ा कहा तो कपड़ा जो है वो शब्द हो गया, और जो साक्षात कपड़ा है वो अर्थ हो गया, पदार्थ हो गया, तो वाचक शब्द को और तस तस धम्मस जम जान दी, जो जानता है तम नाणम, और जो जानने वाला ज्ञान है, एक तो शब्द है, एक वस्तु है और एक ज्ञान है, तीन चीजें हो गई, शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म और ज्ञान ब्रह्म, ये तीन भेद है, बहुत महत्व की चीज है जैन सिद्धांत में, ये अध्यात्म और आगम दोनों में महत्वपूर्ण है, शब्द ब्रह्म, दूसरा अर्थ ब्रह्म और तीसरा ज्ञान ब्रह्म। तो ते तिन्नी नये विशेषावि, ये तीनों ही नयों के भेद हैं। तेज सावेखा सुनया, पेज पलटने में थोड़ा देर लगती है आपको, तेज सावेखा सुनया निरवेखा ते विदुन्नया होंती सैल व्यवहार सिद्धि सुनयादो हो दिनियमीन। बड़ी सुंदर बात है कि ते सावेखा, अगर ये शब्द अर्थ और ज्ञान सापेक्ष हो, माने एक दूसरे से तालमेल बनाकर चलते हो, तो सुनया होती, सुनय कहलाते हैं, सुनय माने सम्यक नय, और निरवेखा अगर निरपेक्ष हो तो दुर्नया होती, दुर्नय होते हैं, अपेक्षा न लगाए, अगर स्यादवाद पद्धति से न चले, निरपेक्ष अगर मान ले किसी चीज को, तो फिर वो निरपेक्ष नय दुर्नय अर्थात मिथ्या नय होते हैं। इसमें केवल रवि की पूजा में एक जगह आता ना, दुर्नय तम सत्वर अटल जावे, उसका अर्थ कभी सोचा आपने क्या है? दुर्नय यानी ये मिथ्या नय, और तम यानी ये मिथ्या नय ही एक प्रकार का अंधकार है, तम यानी अंधेरा होता है, और सत्वर का अर्थ क्या होता है? ये सब शब्द पूरे उन्होंने संस्कृत के लिख दिए, तो हिंदी में शायद ही कोई समझते हो इसका अर्थ क्या है। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र, दुर्नय रूपी अंधकार शीघ्र ही टल जावे। हम उस पूजा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस पंक्ति के बारे में बता रहे हैं आपको जानकारी के रूप में, क्योंकि पूजा का समर्थन तो हम ज्ञान प्रधान पूजाओं का हम समर्थन नहीं करते, पूजा भक्ति प्रधान ही होनी चाहिए ऐसा हमारा सोचना है, क्योंकि आगम में कहीं भी ज्ञान प्रधान पूजा नहीं मिलती, पूजाएं जो शास्त्रों में मिलती है सारी भक्ति प्रधान पूजा, क्योंकि अगर भक्ति प्रधान पूजा नहीं होगी तो फिर उस पूजा को अपन वास्तव में पूजा कैसे कहें, वो तो सामायिक पाठ जैसा हो गया। केवल रवि जो है उसको अगर आप सामायिक पाठ के रूप में पढ़ो तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन अगर भगवान के सामने पढ़ो क्या पढ़ोगे आप, उसमें कई ऐसी पंक्तियां आती ना, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं, ऐसी चैलेंजिंग भाषा अगर तीर्थंग भगवान के सामने आप बोलो तो कैसा लगता है बताओ, उसमें भगवान को कुछ भी आप श्रेय नहीं दे रहे हैं, भगवान की कुछ भी विनय प्रदर्शित नहीं कर रहे कि भगवान आपकी ही आराधना से मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, या फिर आपकी गुण मेरे लिए मुख्य है इस समय। पूजा किसको कहते हैं? पूजक और पूज्य के बीच की दूरी को कम करने की प्रक्रिया का नाम पूजा है। तो अब यहां तो दूरी का प्रश्न ही नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मैं ही वैसा हूं जैसे आप हैं तो फिर दूरी कहां रही, वहां तो बराबरी हो गई ना, और बराबरी में कभी भी भक्ति नहीं होती, हम पहले भी बतला चुके हैं, बराबरी वाले की कभी भक्ति, कभी जुड़वा भाई एक दूसरे के चरण नहीं छूते, देखा आपने, जुड़वा भाई कभी एक दूसरे के चरण नहीं छूते, क्यों नहीं छूते, क्योंकि बराबर है। इसी प्रकार जब भगवान और मैं एक बराबर हो गए तो फिर मेरे अंदर भक्ति पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए वहां पर आपको पर्याय दृष्टि लगाना है कि मैं कहां संसारी पर्याय में हूं और आप कहां अरहंत पर्याय में स्थित। नो संसारी कहा है अकलंक देव ने, आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में अरहंत भगवान को नो संसारी कहते हैं, माने उनका संसार काफी कुछ तो नष्ट हो ही चुका है, थोड़ा बचा हुआ है जो समय आयु पूर्ण करके वो भी समाप्त होने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे वो। तो ऐसे भगवान की भक्ति जिसमें होती है उस भक्ति प्रदान पूजा को मुख्यता देना अच्छा रहता है। अच्छा इसलिए रहता है कि उससे फिर अपने अंदर पवित्रता आती है, और अगर अपन पहले से ही अपने आप को शुद्ध मान करके बैठ जाए, पवित्र मान ले, तो फिर वो दूरी बन जाती है। बराबर मानने से भगवान में और भक्त में, भक्त तो भक्त रहता ही नहीं है जिसने बराबर मान लिया, भक्त तो हमेशा छोटा मानने वाला होता है अपने आप को। भक्त का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ अपन ने देखा था, आपको याद है भक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? भज धातु से बना भक्त शब्द, क्त प्रत्यय लगा करके, क्या अर्थ होता है? भक्त का मतलब होता है टूटा हुआ, विभक्त, विभाजित। ये शब्द तो परिचित है आपके, उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है मात्र। विभक्त का मतलब क्या हो गया? जिसके दो विभाग किए गए हैं। भक्त का अर्थ क्या हो गया? जिसके दो भाग किए गए हैं वो भक्त है, और कराए गए हैं उसको भाजित बोलेंगे। भक्त एक कारित संज्ञक होता है एक व्याकरण में, और फिर एक स्वयं होता है, तो स्वयं होने वाले को भक्त कहेंगे, और फिर किसी ने किया हो तो भाजित कहेंगे। तो भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। क्या टूटा हुआ? तो जिसका अहम टूट जाए उसका नाम है भक्त। बहुत गहरी बात है, ये समझने की बात है। व्याकरण से अभी क्या है, पहले अपन शब्द ही नहीं समझ रहे हैं, और फिर कहां से कहां अर्थ भाव तक के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शब्द का अर्थ देखिए कितना सुंदर है। भक्त का मतलब टूटा हुआ। अब कहां से टूटा हुआ? तो अभिमान की अपेक्षा से टूटा। मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ है, ये परिणति जिसके अंदर प्रकट हुई है उसका नाम है भक्त। तो इसलिए भक्ति टूटे बिना संभव नहीं है, और टूटने का मतलब मैं, ये जो मैं है ये जब तक नहीं टूटता तब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति आ नहीं सकती, और जिसके अंदर भक्ति नहीं वो भक्त नहीं है, और भक्त नहीं है तो फिर वो भगवान की पूजा कैसे करे। इसलिए ज्ञान प्रधान पूजा वास्तव में सामायिक पाठ की श्रेणी में आ सकती है, लेकिन पूजा की श्रेणी में तो वही पूजा आएंगी जो भक्ति प्रधान है। ये बात हमने इसी साल सीखी है। वैसे भक्त का अर्थ क्या होता है, एक बार मतलब किसी का पढ़ रहे थे हम व्याख्यान, तो इंग्लिश में कुछ शब्द थे वो, तो भक्त शब्द को लेकर के उनने ऐसा कुछ लिखा हुआ था। फिर हमने उसमें पूरा व्याकरण के नियम लगाए कि कौन सा प्रत्यय लगता है, कौन सा धातु लगता है, और सही अर्थ तो वही होता है, भक्त का मतलब टूटा हुआ। दो भाग जिसके हो गए हैं वो भक्त, तो अहंकार के टुकड़े हो गए जिसके वो भक्त। फिर क्या कहते हैं कि सैल व्यवहार सिद्धि, समस्त व्यवहार की जो सिद्धि है वो नियमेण सुनयादो हो दी, नियम से सुनय पूर्वक होती है। अगर आप दुर्नय लगाओगे तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो पुत्र ही हूं, पिता नहीं हूं, तो आपका बेटा फिर क्या बोले आपको? पुत्र बोले तो ऐसा एकांतवाद पकड़ोगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा, लोक व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। और फिर शास्त्र में भी जो व्यवहार है जीवों के भेद प्रभेद आदि, वो भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए सुने से ही सिद्धि होती है। जम जानि जय जीवो इंद्रिय वावार काय चिट्ठाही तम अनुमानम भण्णदि तम विनयम बहुविहम जान। जो जीव को इंद्रिय की प्रवृत्तियों से और काय की चेष्टाओं से जानता है, जैसे चींटी चल रही है तो बोलते हैं कि ये जीव है, तम अनुमानम भण्णदि, उसको अनुमान कहा जाता है। तम्पि नयम, वो भी नय है एक प्रकार का, और बहुव्यम जान, उसके बहुत भेद है। अनुमान भी कई प्रकार का होता है। जो संगहीन एक को दुविहोविय दव्व पज्जये हिंतो तेसिंच विशेषादो नयगम पहुदी हवे नाणम। संग्रह से जो एक रूप है वही वस्तु द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो दो प्रकार की दिखाई देगी, और तेसिंच विशेषाद और द्रव्य और पर्याय के अगर भेद करोगे तो नयगम आदिक अनेक भेद हो जाएंगे। वो ज्ञान के ही भेद हैं जिनको नय कहते हैं। सात नय हैं, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। इनमें से तीन नयगम, संग्रह और व्यवहार द्रव्यार्थिक नय हैं, और बाकी चार ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये चार नय पर्यायार्थिक नय हैं। ये आगम के नय की अपेक्षा हो गई। अध्यात्म में जो व्यवहार नय है वो अलग है, आगम का व्यवहार नय अभेद में भेद करता है और अध्यात्म का व्यवहार नय भेद में अभेद करता है। जैसे आगम का व्यवहार नय क्या कहता है, गुण और गुणी का भेद करके बतलाता है। जीव गुणी है और ज्ञान, दर्शन आदि उसके गुण हैं। वास्तव में ये जीव, ज्ञान, दर्शन ये सब कब अलग अलग पड़े हैं क्या, है एक ही सत्ता में, लेकिन फिर भी वो नए जो है इनमें भेद करने का काम करता है। तो सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्यम, सत द्रव्य है, और द्रव्य कहने से क्या हो गया, द्रव्य मात्र उसमें संग्रहित हो गया, ये संग्रह नए का काम है। और फिर व्यवहार नए क्या करता है, द्रव्य के भेद करता है, जीवम अजीवम दव्यम, जीव और अजीव दो भेद है। फिर अजीव के पांच भेद करता है, जीव के दो भेद करता है, संसारेणो मुक्ताश्रय, फिर संसारेण त्रसस्थावरात, संसारी के दो भेद करता है, त्रसस्थावर, फिर स्थावर के पांच भेद करता है, और त्रस के फिर पांच भेद करता है, विकलत्र और सैनी असैनी पंचेंद्री, और फिर इनके भी और भेद करता चला जाता है। तो जहां तक भेद चलता है वो सब आगम का व्यवहार नय है और अध्यात्म का व्यवहार नय। अध्यात्म का व्यवहार नय जो होता है वो भेद में अभेद करता है। जैसे शरीर और आत्मा निश्चय से भिन्न है, लेकिन फिर भी अध्यात्म का व्यवहार नय कहता, वो अपन लोक व्यवहार में सभी नयों का इस्तेमाल होता है। सर्व नय साध्यो ही लोक व्यवहार है, लोक संव्यवहार है, सब नयों से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। वासुपूज्य भगवान लाल है ये वो वाला व्यवहार नहीं कह रहा है, ये वाला व्यवहार नहीं कह रहा है, ये व्यवहार नहीं द्रव्यार्थिक नहीं है, वो पर्यायार्थिक, इतना फर्क है। जो साहदि सामण्यम अविनाभूतम विशेष रूपे ही नाना ज्युति बलादो दवत्थो सूर्णो होदी। जो सामान्य को सिद्ध करता है, विशेष रूपे ही अविनाभूतम, लेकिन सामान्य कैसा होता है, अपने विशेषों से, विशेष रूपों से माने पर्यायों से अविनाभूत होता है। द्रव्य हो और पर्याय न हो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी द्रव्यार्थिक ने क्या करता है कि सामण्यम साहदी, सिर्फ द्रव्य को ही सिद्ध करता है, साधता है। नाना जुत्ति बला दो, अनेक प्रकार की युक्तियों को लगा करके वो द्रव्य की सिद्धि करता है। सो दव्वत्थो नवो होदी, वो द्रव्यार्थिक नय होता है। जो साहेदि विशेषे बहुविह सामण्य संजुदे सव्वे साहण लिंग वसादो पज्जय विसोह नवो होदी। जो साहेदि विशेषे, जो पर्यायों को सिद्ध करता, विशेषे बहुवचन में दिया है, वहां सामण्यम एक वचन में था क्योंकि द्रव्य एक वचन होता है और पर्याय अनेक होती है, एक ही द्रव्य में पर्याय अनेक होती है, द्रव्य तो एक रहता है। तो बहुविध सामण्य संयुते, बहुत प्रकार के सामान्य से संयुक्त, सव्य विशेष, सभी पर्यायों को जो साधता है, साधेगा कैसे, साहन लिंग वसा दो, जो साधन के लिंग यानी उपाय है या चिन्ह है उनके वश अर्थात प्रभाव से, उनके माध्यम से सिद्ध करता है। पज्जय विषयो न होदी, वो पर्याय को विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय होता है। फिर इसके बाद में जो नयों के भेद प्रभेद हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। अब देखो पर्यायार्थिक नय से जब तक इतने भेद स्पष्ट समझ में ना आए तो फिर अपन कितना बारीक जा पाएंगे। यह है बारीकी, बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं ना, वो इसका नाम है। किसी के दोष निकालना ज्ञान की महिमा को सूचित नहीं करता, वो कषाय को सूचित करता है। ज्ञान की महिमा को सूचित करने वाला ये निर्णय है, तत्व का निर्णय, सही वस्तु स्वरूप जो आत्मा है, द्रव्यार्थिक नय से कैसा कैसा है और पर्यायार्थिक नय से कैसा कैसा है। इतना अगर समझ लो, ये छह पर्यायार्थिक नय समझ लिए और पिछले में देखो द्रव्यार्थिक नय के अगर भेद किए हो तो वो भी अपन पढ़ लें। है सौभाग्य से, चलो अच्छा हुआ अभी हमारी भावना हुई कि देखें पीछे, वो भी देख लें अपन। कोई ऐसी उतावली नहीं है, आगे भागने की कोई जरूरत नहीं, नैगम संग्रह अपन समझ लेंगे, लेकिन ये चीज जो है अनमोल चीज, इसको पहले समझ लो। अभी क्या है कि पहले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो भेद किए नयों के, और उसके बाद फिर इनके सात भेद किए। तीन द्रव्यार्थिक के भेद किए, कौन से तीन? नैगम संग्रह और व्यवहार। और चार पर्यायार्थिक के भेद किए, वो कौन से चार? ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत। तो अभी जो है अपन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को ही पहले समझ लो, ये बहुत महत्व का विषय है। यह नय साधयति विषयी करोति गृह्णाति इत्यर्थ। जो नय साधता है, विषय करता है, ग्रहण करता है, किन तत्, किसको? सामान्यम, सामान्य को। निर्विशेषम सत्वम, निर्विशेष माने पर्याय रहित जो सत्ता है उसको पकड़ने वाला जो नय होता है वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। द्रव्यत्वात्मत्वादि रूपम, द्रव्यत्व अथवा आत्मत्व आदि रूप को जो स्वीकार करता है वो द्रव्यार्थिक नय। तत्कीदृशम सामान्य, वो सामान्य कैसा होता है? तो बोले विशेष रूप ही अविनाभूतम, गाथा में आया था कि वो पर्यायों से रहित नहीं होता सामान्य। द्रव्य के साथ पर्याय तो लगी रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और फिर कोई उसका उल्लंघन नहीं है। फिर आगे जीवास्तित्व पुद्गल अस्तित्व धर्मास्तित्व आदि स्वभाव ही अविनाभूतम। जीव के अस्तित्व, पुद्गल के अस्तित्व, धर्म द्रव्य के अस्तित्व आदि स्वभावों से अविनाभूत, एकैकम अंतरेण न भूयते स्म, एक एक के बिना वो दूसरा नहीं हो सकता। इत्यविनाभूतम, इसलिए उसको अविनाभूत कहते हैं। अविनाभूत का मतलब जिसके बिना जो न हो उसको अविनाभूत कहते हैं। सहभूतम इत्यर्थ, साथ में होने वाला, ये समझ लो सीधा सीधा उसका अर्थ ये निकला, साथ में होने वाला। कुतः किस प्रकार? तो कहते हैं नाना युक्ति बलात्, ये द्रव्यार्थिक नय कैसे सिद्ध करता है उस सामान्य को? तो फिर बोले कि अनेक प्रकार की युक्तियों के बल से। अनेक प्रकार की युक्ति का अर्थ क्या होता है? अपन अपनी भाषा में कहते हैं तर्क वितर्क, और शास्त्रों में उसको युक्ति, वो नय प्रमाणाभ्याम युक्ति, नय और प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करता है कि ये द्रव्य है अथवा ये सामान्य है। अनेक तर्क ज्ञानादि बलात्, वही उसका पर्यायवाची दे दिया, अनेक तर्क ज्ञान के बल से। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ऐसा है तो ऐसा होगा, इसका नाम है तर्क। ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना? अग्नि है तो धुआं होगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, ये तर्क कहलाता है। सद्रव्यार्थिक नयो ज्ञातव्य भवति, वो द्रव्यार्थिक नय जानने योग्य होता है। तथा ही उसका आप खुलासा कर रहे हैं, अब इसके भी बहुत सुंदर भेद बताएं, इसको भी लिख लो आप। अपन ने थोड़ा सा क्रम का उल्लंघन कर दिया, पहले पर्यायार्थिक के छह भेद लिख लिए, द्रव्यार्थिक के लिख लो फेयर में, उसको पहले कर देना द्रव्यार्थिक को, है ना, नंबर एक डाल देना, उसके नंबर दो डाल देना पर्यायार्थिक। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, कर्मोपाधि से निरपेक्ष, पहला द्रव्यार्थिक क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्ध आत्मा, जैसे संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है। देखो ये चीजें न पढ़ने के कारण ये व्यवहार पंथी लोग जो हैं उनमें विवाद चलता है। क्या विवाद चलता है कि नहीं सिद्ध बनने की क्षमता है, क्या सिद्ध बनने की क्षमता है, अभी सिद्ध समान नहीं है। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्ध आत्मा। इसका हम दूसरा दृष्टांत देते हैं, एक आपकी समझ में आने वाला। वाटर को माने पानी को केमिस्ट्री में किस फॉर्मूले द्वारा सूचित किया जाता है, जिनको जानकारी हो, H2O। अब हमने जबलपुर में भी एक बार ये दृष्टांत दिया था कि अगर अपन उस H2O को दृष्टि में रखें तो वो H2O कहां पर है वो गौण हो जाता है, ग्लास में है, मटके में है, घड़े में है, या सुराही में है, टंकी में है, नदी में है, कुएं में है, बावड़ी में है, तालाब में है, समुद्र में है, या फिर वहां जबलपुर में हम दृष्टांत दिया था नरगैया की, उसमें नाली में है, कहीं भी पानी है, अगर H2O को आप देख रहे हैं तो फिर वो जितने भी संयोग है, क्या लिखा है इसमें, कर्मोपाधि निरपेक्ष, वो उन आसपास क्या है उसकी अपेक्षा नहीं रखते हुए सिर्फ शुद्ध जल को देखता है।